नमस्कार श्रोताओं, मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रिय धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कड़ी।
मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सीमा के जाते ही माथुर निवास के आंगन की सारी रोशनी जैसे छिन गई। जिस आंगन से सीमा को विदा किया गया था, आज वहीं पर वो कफन में लिपटी हुई थी।
मेरी बिटिया, उसे नजर भर के देख भी नहीं पाई अपनी गुड़िया को।
माँ, अब पानी पी लीजिए। माँ,
अरे शनि का प्रकोप इस घर को चबा गया।
मुखाग्नि का समय हो रहा है, विवाहित स्त्री को मुखाग्नि उनके पति ही देंगे।
क्या हुआ प्रीता, तुमने सीमा के ससुराल वालों को फोन किया?
ना सीमा दीदी के ससुराल वाले फोन उठा रहे हैं और ना ही घर का दरवाजा खोल रहे हैं। वो नहीं आएंगे दीदी।
जरा जल्दी कीजिए, शमशान जाने का समय हो गया है।
एक बार फिर से फोन करके देखो।
नहीं दीदी, वो लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं।
हम जब जीते जी उन्होंने सीमा का साथ नहीं दिया, तो अब आखिर भी वो लोग क्या करेंगे?
हम बस एक आखिरी बार फोन लगा कर देख लेते हैं।
फोन की घंटी लगातार बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। सीमा के ससुराल वाले इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हैं? सीमा के पति रवि को समाज का डर था, लेकिन अपनी माँ की कड़ी हिदायत के सामने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी।
माँ, फोन उठाने दो।
तुम क्यों दोगे आग? तुम नहीं जाओगे बेटा।
माँ, समाज क्या बोलेगा? तुम एक बार भी नहीं सोच रही हो। मेरा काम धंधा है, सब चौपट हो जाएगा। लोग हमारी दुकान पे आएंगे नहीं। अगर सबको पता चल गया कि हमने अपनी पत्नी की चिता को आग नहीं दी, हम खुद जाने के लिए आतुर नहीं है कोई।
अरे तुम्हें बहला फुसला कर बुला रहे हैं, वो उसकी बहन की साजिश है सब। तुम्हारे ऊपर बीवी की हत्या का इल्जाम लगाकर अंदर करवा देगी।
पर माँ,
भूल गए? तुमको धमकी दी थी ना कि तुमको नहीं छोड़ेगी। पूरे समाज के सामने पुलिस पकड़ के ले गई तुमको, तो सोचे हो कि क्या हाल होगा?
मुझे जीते जी तो अपना हक नहीं मिला माँ। कम से कम दीदी को तो मरने के बाद उनका हक दे दीजिए। एक शादीशुदा औरत की चिता को तो अग्नि उसका पति ही देता है ना माँ। उनके जाने के बाद तो ये हक उनसे मत छीनिए।
अरे मुझे अपनी बहुओं से संतान का सुख नहीं मिला, मुझे भी मेरा हक नहीं मिला, फिर तो हिसाब बराबर होना चाहिए ना। तुम सुन लो रवि, हम ऐसे नहीं बड़बड़ा रहे। वकील बाबू से बात की थी, उन्होंने बोला कि अगर तुम गए तो इल्जाम लगा के अंदर कर देंगे। अब बाकी तुम्हारी अपनी अकल, जो करना है करो।
डॉक्टर पाल को ही मामला सुलटाना होगा, उनको फोन लगाते हैं।
हेलो
डॉक्टर साहब, नहीं बची सीमा।
पता चला?
अरे हमको डर है कि ये लोग केस ठोककर कहीं हमको फंसा ना दें।
हम सब गोटी लगा रहे हैं, तुम वकील वर्मा जी के पास जाओ, पूरा प्लान तय है, फिर मिलो हमसे।
अरे हम कहे थे ना आप हमको डुबा देंगे।
सुनो, सर गरम मत करो हमारा, और जो बोल रहे हैं वैसा करो। अब रखो फोन।
हम इंतजार करते रहे, पर सीमा के ससुराल वाले नहीं आए। जिस पति को चिता को अग्नि देनी थी, वो अपने पत्नी के अंतिम क्षण में भी उसके साथ नहीं था। एक पिता जिसने कुछ ही दिन पहले बेटी को प्यार से डोली में बिठाया था, आज उसकी अर्थी के सामने वो टूटा हुआ सा खड़ा था। बाबूजी कैसे भूलते वो पल जब सीमा विदाई पर बाबूजी से गले लगकर रोई थी।
बेटा, अपने बाबूजी से मिलने आती रहना।
हाँ, आपको बताना भूल गई थी, सुबह वाली दवा तीसरे दराज में है, रात वाली पहले में। मैं चली गई तो ये सब याद रखिएगा।
इसीलिए तो अपने गांव में ब्याह है तुझे। जब दवा या किताबें नहीं मिलेंगी तो घर बुला लेंगे तुझे। ना ना बेटा, रोते नहीं।
बाबूजी।
रवि बेटा, हम अपनी अमानत तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हैं। बड़े ही नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को।
आप चिंता मत कीजिए, सीमा आती जाती रहेगी।
बेटा जुग जुग जियो, मुहूर्त हो गया है, तुम लोग निकलो।
जी बाबूजी।
तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक की यह कड़ी? श्रोताओं, इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या कहना है? इस पर हमें अपनी राय दें नंबर 3 दबाकर। साथ ही इस धारावाहिक की पिछली कड़ियाँ सुनने के लिए अभी दबाएं नंबर 9। धन्यवाद।